वही स्कूलना। और जब हमने कहा लगा आपको, वही अंदाज है ना, बीच में लग नबी है, इन्ना रब्बा का है तब इन्ना सी। और जब हम आपसे कहते हैं कि आपके रब ने लोगों का इहाता किया हुआ है, कैसे किया, कहाँ किया है, सूरह बुरूज आयत 20 में अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, यानी अल्लाह ने लोगों को घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है। सूरह मुतफ़फ़ीन की आयत है कि इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, लोगों तुम्हारा रब तो तुम्हारी घात लगाए हुए। तो अल्लाह कहते हैं कि नबी हमने आपको बता दिया है कि हम लोगों से गाफिल नहीं हैं, हमने लोगों को घेरा हुआ है हर तरफ से। ये लोग जब ऐसी आयतें सुनते हैं तो डरने की बजाय फजूल बहसों में पड़ जाते हैं, हालांकि अल्लाह इनके हर अमल को देख रहा है। वमा जालना रोयल्लती, ये दूसरी बात है, और नहीं बताया हमने इस मुशाहदे को अल्लती आ रही ना का, जो हमने आपको दिखाया था, इशारा है मेराज की तरफ, क्यों, इल्ला फितना तलिन्नास, मगर एक फितना लोगों के लिए। देखिए यहाँ लफ्ज रोया आया है ख्वाब के मानी में नहीं, बल्कि इससे मुराद है रोयते बसरी। रोयत का मानी क्या होता है, देखना, टू सी, बसरी आंख से। इंसान अपनी आंखों से जो कुछ देखता है उसको भी रोया कह दिया जाता है। इशारा है शबे मेराज में अल्लाह के नबी को जो मुशाहिदात कराए गए थे उनकी तरफ। जब अल्लाह के नबी ने वो निशानियां जो वहां देखी थी उसकी तफसील मक्का वालों को बताई, तो मक्का वालों के लिए तो फितना ही बन गया। वो ना सिर्फ खुद इसके मुनकर हुए, बल्कि इसकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को उनके दीन से दूर करने में लग गए। और वाकई मेराज को बुनियाद बनाकर उन्होंने पूरे जोरों शोर से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू किया और लोगों को ये साबित करवाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुनून है, जिन चमटकियां। इस जमाने में जब मक्का से बैतुल मकदस पहुंचने में तकरीबन 15 दिन लगते थे, तो ये दावा नाकाबिले यकीन मालूम होता था कि कोई शख्स रातों रात सिर्फ एक ही रात में बैतुल मकदस के आसमानों तक होकर आ गया, तो मक्का वालों ने इस मौके को गनीमत जाना, इस मौजू को उछाला और मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर बहस मुबासे किए। और इस तरह ये बात ना सिर्फ ये कि कुफार के लिए फितना बन गई, बल्कि मुसलमानों के लिए भी बन गई। और आपको पता है कि वाकई में राज के बाद कई लोग इस्लाम से हट गए थे, दुख के साथ कह रही हूँ। आम हालात में बहुत सारे लोग दीन पे जमे रहते हैं, 19-20 की चेंज आती है ना तो हट जाते हैं, ये लोगों के अंदर की कमजोरी होती है। अच्छा जी ये तो फिर ठीक ही नबी नहीं होगा, जो लोग देखो कहाँ चल पड़े, वहां चले गए, अच्छा ये तो फिर नाउज़ुबिल्लाह कोई बात ही होगी। ये वही वक्त था कि जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक बने, कि जब उन्होंने कहा कि जब वो ये कहता है कि मेरे पास हर रोज फरिश्ता आता है, तो हमने उसका दावा तस्लीम किया ना, तो हम ये मानने में क्यों इनकार करें कि वही फरिश्ता रातों रात उसको आसमानों की सैर करा दे। तो वो तो सिद्दीक अकबर बन गए, लेकिन कई कच्चे पक्के हट गए। तो हाँ कीजिए अल्लाह पक्का कर दे। देखिए बहुत बड़ा फितना है कच्चे पक्के लोगों को। असल में आखिर में वही लोग जन्नत में पहुंचेंगे जो दिल से ठुके हुए मुसलमान होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं वश्शजरतुल मलऊना तफिल कुरान। अब ये तीसरी चीज है जो तीन निशानियों की बात थी इस आयत में, और इस दरख्त को भी जिस पर कुरान में लानत वारित हुई। ये कौन सा दरख्त था, जक्कूम का दरख्त है। सूरह साफ़ात आयत 64 में हम पढ़ेंगे कि जहन्नम में एक दरख्त होगा, जहन्नम की जड़ है और उसकी तह में दरख्त होंगे। तो जब ये बात वहां पहुंची लोगों के लिए, तो लोगों ने मजाक किया, कहने लगे अच्छा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जहन्नम के अंदर दरख्त होंगे, भाई कभी तुमने आग में भी दरख्त जलते देखे, ख्याल कहता कि अगर दरख्त होगा तो जल जाएगा। लेकिन उन्होंने उस दौर में माइक्रोवेव ओवन नहीं देखा था, कौन सी आग होती है माइक्रोवेव ओवन में, हैलोजिन ओवन में कौन सी आग होती है, तो चीज पकती है कि नहीं पकती। तो जब दुनिया में बगैर आग के चीजें पकने लग गई, तो क्या जहन्नम की आग में सब्ज दरख्त नहीं हो सकते। तो अबू जाहल जैसे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। जब कहा गया कि जहन्नम में थोर का खाना होगा, तो अंदर गया, मक्खन और जैतून मिलाकर खाने लगा, तो कहने लगा खाओ को यही है वो खाना जिसकी मोहम्मद बातें करता है नाउज़ुबिल्लाह। तमस्खुर, टोटके, शोशे। और याद रखिए ये अल्लाह के नबी की महफिलों में बैठ के नहीं करते थे, ये साइड की महफिलों पे और टॉक्स में करते थे। ऐसी बातें अल्लाह को तो पहुंच जाती थी ना। अल्लाह ताला कहते हैं वनुखफ्फिफुहुम, हम इन बातों से तो फिर इनको खौफ दिलाते हैं, तंबीह करते हैं, लेकिन फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा, मगर ये तंबीह इनकी सरकशी ही में इजाफा किए जा रही है। जितना समझाओ उतना ही दूर, जितना डराओ उतना ही ना डर। अब देखिए जब अंदर ठीट हो जाता है ना, तो कोई रोता है तो वो हंसता है, कोई डराता है तो वो आगे से ढीला हो जाता है। ऐसी बातें सुन के भी बाज लोग और ज्यादा मुस्कुराते हैं, जेरे लब मुस्कुराते थे, ये कैसी बातें करते हैं, इनको समझ ही नहीं, ये ऐसी बातें, ये है और वो है, दिस सेट दैट करने वाले। तो अल्लाह की जात फरमाती हैं कि तुम जो भी कहते हो इनको बता दो, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अब यहाँ पे बात पूरी हुई, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है जिस पे एक बातिल नजरिया शुरू हो गया, उस पे बात करूंगी। आयत 60 में आया था, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। आप इस आयत को कैसे समझे कि अल्लाह ने इन सबको घेरा हुआ है, बात सच है ना? अब आप मुझे बताइए, क्या इस लफ्ज से अल्लाह ताला के हर जगह हाजिर और नाजिर होने का नजरिया निकलता है? कुछ लोगों ने फलसफे की रोशनी में पढ़कर और न जाने किसके अवतार और किसको किस तरह करके, पैंथिज्म एक नज़रिया है, हमा उस्त कहते हैं उसको फारसी में, वो नज़रिया क्या है, वो कहते हैं ये पूरी कायनात जो है ना, नऊज़ बिल्ला, ये खुदा है और हर एक ने जो रूप धारा हुआ ना, ये अंदर में अल्लाह। आपने हलूल का नज़रिया सुना, लफ्ज़ अवतार सुना, अवतार क्या होता है, जैसे सूरज देवता का अवतार कहते थे फिरौन को, कहते थे कि असल में सूरज जो है ना, सूरज है वो जमीन पे फिरौन के रूप में आया हुआ है, यानी फिरौन अंदर से सूरज है और बाहर से फिरौन है, इसको कहते हैं अवतार। हिंदू धर्म में ये बहुत आम लफ्ज है, फला उसका अवतार, अवतार भी कह लीजिए रूप। जैसे मैं आपको किस तरह समझाऊं कि असल सूरज तो जमीन पे नहीं आता, तो उसकी कोई डमी ला के बना दे, कह दे कि ये देखे ये सूरज की एक शिबी है, शिबी कह ले अवतार को। कुछ लोग इस किस्म की आयतों को लेकर साबित करते हैं कि देखो वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, तो इससे पता क्या चलता है कि हर चीज को अल्लाह ने घेरा हुआ है, तो नऊज़ बिल्लाह हर चीज में अल्लाह। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के पास से जो पुकार मिली थी वादी तीम में, वो कहते वो दरख्त के अंदर नऊज़ बिल्लाह खुद खुदा था, और वो दरख्त ने जब कहा था कि इन्नी अनल्लाह, तो बहरहाल ये एक बातिल नजरिया आज के दौर में ऐसे बहुत लोगों को माइल करते हैं लोग, क्योंकि होता ये है कि ऐसी बातें जरा बहुत इंटेलेक्चुअल लगती है, मैं भी करने लग जाऊंगी ना तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे वाह ये तो बात कभी नहीं सुनी। तो ऐसी बातें जो दूर की कौड़ियाँ होती हैं ना, ये बाज़ दफ़ा कुरान सुनने से दूर ले जाती हैं। हम इसको कैसे समझेंगे कि अल्लाह ने उनको घेरा हुआ है? अल्लाह आसमान पे, सातवें आसमान पे, अर्श के पास, अल्लाह ताला का वजूद वहाँ है, लिख लें ये बात, वजूद से अल्लाह वहाँ है, लेकिन अपने इल्म अलीम होने के नाते, समात समी होने के, बसीर होने के नाते, वो दुनिया के कोने कोने को जानता है। यानी अल्लाह की सिफात इतनी बड़ी है कि वहाँ हो के भी वो हमें देख रहा है, जानता है, सुनता है। ये जो लफ्ज है ना अल्लाह हाजिर और नाजिर है, ये दुरुस्त जुमला नहीं है एक खास एंगल से अगर इसको देखें तो। अल्लाह की जात तो हदूद और कयूद जमानों मकान से पाक है, आप उसको किसी चीज में समेट सकते हैं? आप बताइए कि अल्लाह की जात इस 5-6 फुट के वजूद में आ सकती है? तो फिर जब इंसान गुनाह करता है तो क्या अल्लाह भी उस वक्त गुनाह करता है? ये सिर्फ नफरमानी की बातें हैं, ऐसे फितनों से बचने की जरूरत है, और आज के दौर में ऐसे फितने बहुत आम हैं। पढ़े लिखे मुल्कों में तो ये बातें बड़ी आम हैं, और हदीसों का इनकार और सुन्नतों से दूर कर कर आके लोगों को पीछे रखा। अभी तक जितना सबक किया इसका खुलासा ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को चुना था, लेकिन जिन लोगों का दिल अभी पूरा नहीं खुला था ना, तो वो हीले बहाने करके निशानियां मांगते थे, मुझसे मांगते थे। अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि तुम्हें अगर नहीं मानना ना तो तुम मुझसे मानकर भी नहीं मानोगे। आगे इंशाल्लाह जब आदम और इबलीस का किस्सा पढ़ेंगे तो वो भी इसी की कंटिन्यूएशन है। आयतों को साथ लेकर हल्के से खुलासे की तरह पूरे सबक को आगे तक कर लेते हैं, फिर जिस तरह भी वक्त होगा उसके हिसाब से हम इसको साथ साथ लेकर चलेंगे। आयत नंबर 61, वइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, और याद करो जब हमने कहा था फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, फसजदू, तो उन सब ने सजदा कर लिया, यानी हुक्म को मान लिया। हां मगर इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, यानी इबलीस ने सजदा नहीं किया। गोया कि आप कह लीजिए कि इबलीस ने हुक्म ना माना, रूल को ना माना। जब उसको कहा गया कि तू सजदा कर, तो सजदा तो नहीं किया, लेकिन काला उसने कहा, किसने? इबलीस ने, आ असजुदु लिमन खलकता तीना, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने पैदा किया है मट्टी से। हुक्म मानने की बजाय क्वेश्चन, ये भी एक इबलीसी रवैया नोट कर लें कि जो कहा था वो कोई नहीं किया, लेकिन उसके जवाब में सवाल पूछना शुरू हो गया, हुक्म की हिकमत मालूम करने लगा। अच्छा जी, तुम मुझे उसको सजदा करने को कहते हो जिसको आपने मट्टी से पैदा किया। तहकीर मुराद है खास तौर पे इसमें आदम की, कि अच्छा शायद अल्लाह को गलती लग गई है। अब देखिए सूरह बकरा के रुकू नंबर 4 में, सूरत अल आराफ के रुकू नंबर 2 में, और सूरत हिजर के रुकू नंबर 3 में ये किस्सा 3 बार हम सुन चुके हैं। यहाँ चौथी बार ये बात आ रही है। हर जगह आप देखेंगे कि इसका स्टाइल बिल्कुल फर्क है। इबलीस ने चूंकि सवाल किया, अब सवाल पूछ के जाता कैसे है, किधर है? पहली बात उसने सवाल पूछा, हुक्म की हिकमत मालूम करना चाहिए। अब उससे भी आगे बढ़ा, काला मजीद कहने लगा, अरअईतक, जरा देख तू इसको। यानी ये इतना तहकीर का अंदाज है जैसे, सच्ची बात है उर्दू में आप ये कह लें, क्या तुमने खुद को देखा, अपनी शक्ल देखी, कि तू मुझे ये हुक्म दे रहा है, जा तू खुद को देख, ये मुराद है, जरा देख तू इसको। हाज़ल्लज़ी करमता अलैया, जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है, यानी नौज़बिल्ला, या तो अल्लाह तू खुद को देख, या वो देख जिसको तू मुझे सजदा करने को कह रहे, यानी इतनी हकीर चीज को मैं सजदा करूं, और फजीलत तूने मुझे बड़ी दे दी, यही तेरा सारा मामला था। लाइन अखरतनी, यहां से दुआ शुरू होती है शैतान की, अगर तूने मुझे मोहलत दी, अखर युखिरु, ताखीर का लफ्ज़ पहले भी कई दफा सुन चुके हैं, अगर तूने मुझे मोहलत दे दी, कब तक? इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन तक। गोया किससे क्या पता चला कि इबलीस को ये पता है, नंबर एक दुआएं अल्लाह सुनता है, दूसरी बात डायरेक्ट अल्लाह को पुकार रहा है, बीच में किसी को नहीं कह रहा कि मोहम्मद के वास्ते और वसीले से तुझसे दुआ मांग रहा हूं, तीसरी बात उसको क्यामत का भी यकीन है। ठीक है, इतने उसके अकीदे पुख्ता थे, फिर भी देखिए अमल कहां ले गया उसको। अब जिसको तूने हुक्म दिया कि मैं सजदा करूं, क्या तूने उसको देखा या तूने खुद को देखा? तो बस तू मुझे मोहलत दे दे क्यामत के दिन की, क्या करूंगा? लाहतनी करना, मैं इसकी नस्लों को काबू में कर लूंगा। ये जो लफ्ज है ना अहतनी करना, हनक से, उर्दू में आपने एक लफ्ज सुना होगा, बच्चे को तहनीक दी, घुट्टी देना, सुना वे लफ्ज? वही लफ्ज है ये भी, कि मैं दूंगा। और लफ्ज ही माना इसका होता है जकड़ लेना, लगाम डाल देना, यानी अगर तू मुझे जरा लंबी उम्र दे के तो देख, मैं आदम के बच्चों को जकड़ लूंगा, इनको लगामे डालूंगा, इनकी बागें मेरे हाथ में होंगी, गोया के पूरे का पूरा इनको अपने काबू में ले लूंगा। ठीक है, पूरा इसको ले लूंगा। और डिक्शनरी में अगर आप इस लफ्ज को देखें तो इसकी बहुत बारीकियां हैं, जिसमें मकड़ियां जब किसी जगह जाती हैं ना, तो पूरे का पूरा जगह चट कर जाती हैं। इसी तरह टिड्डियां जब किसी फसल पे पड़ती हैं ना, तो फसल का सिफाया कर देती हैं, उसके लिए भी यही लफ्ज आता है। इसी तरह घोड़े के निचले जबड़े को ऊपर वाले जबड़े से बांध दिया जाता है, यानी जब मालिक चाहता है ना कि घोड़ा कुछ ना खाए, तो उसका मुंह बांध देता है, ऐसे एक कपड़ा लेके ना यूं बांध देता है, इस कैफियत को भी इख्तनाक कहते हैं। अब सोचिए वो शैतान कैसे हमें लपेटता है। इसी तरह पगड़ी का ठोड़ी से नीचे बांधना, इसको भी इख्तनाक कहते हैं। पगड़ी जब लोग बांधते हैं ना, तो बाज कल्चर में आपने देखा होगा कि वो फिर नीचे गर्दन से भी झुकाते हैं, पूरा जकड़ने का मानी आता है। अगर आप इन सारे लफ्जों को देखें तो सारी लफ्जों में जो लफ्ज है वो क्या है, कि मैं इनको जकड़ लूंगा, काबू में कर लूंगा, लगामे डाल दूंगा। घोड़ा जब ताकतवर होता है ना, तो लगाम डाली जाए ना, तो वो मालिक के काबू में आ जाता है। फिर जितनी मर्जी तेज दौड़ाएं, हल्का करें, रोकें, वो रुक जाता है। इसी तरह इबलीस यहाँ जो अपना प्लान दे रहा है कि मैं आदम की औलाद को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में ले आऊंगा और इसको मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा। अल्लाह अकबर, कुछ नहीं हो रहा सुन के? और शैतान ये सिर्फ कहता ही नहीं है, करके भी दिखाता है। हदीस में आता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो इबलीस उससे पहले वहां आके बैठा होता है, और जो ही बच्चा पैदा होता है वो उसके दोनों पहलुओं में उंगली चुभोता है। जूं चुभोता है, जैसे आप कह सकते हैं ना किसी चीज को चुभोना, लेकिन करता ये पर्दे के पीछे से, और उसी से बच्चा रोता है। ये जो पैदा होते ही बच्चे के रोने की आवाज है ना, मेडिकली आप इसकी कोई भी रीजन दे दें, स्पिरिचुअली भी आप कह दें बच्चा दुनिया में रोता हुआ है, लेकिन हमें हदीस की रोशनी में पता चलता है कि इबलीस बच्चे के पैदा होते ही काम शुरू कर देता है। ये होते हैं काम करने वाले, हम जैसे नहीं होते। पानी सर से गुजर जाए फिर मौलवी साहब के पास ले जाते हैं, जरा दम कर दो बच्चा ठीक हो जाए, और दुआ कर दो बच्चे ठीक हो जाए। हम तो तब जाते हैं ना दीन वालों के पास जब पानी सर से गुजरता है। इबलीस की प्लानिंग लॉन्ग टर्म है और वक्त से पहले तैयारियां करता है, और ये बुखारी की रिवायत है। अबू दरदा की एक रिवायत है सही बुखारी में, क्या तुम में से कोई है जिसे नबी की दुआ से शैतान ने महफूज रखा हो? तो मुगीरा ने कहा हाँ, अम्मार बिन जासिर को। जब इनकी माँ प्रेग्नेंट थी इनकी वजह से, तो आप नबी सल्लम से दुआ का कहा, तो अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि इस बच्चे को अल्लाह ताला शैतान से बचाए, तो तीन लोगों का नाम आता है। पहली जो रिवायत बुखारी की बता रही थी उसके आखिर में आता है कि शैतान बच्चे को चुभोता है सिवाय दो के, मरियम और ईसा। उनको माँ की दुआ लग गई, बीबी हन्ना की, तो वो बच गए, और अम्मार बिन जासिर को अल्लाह के नबी की दुआ लगी। तो गोया कि शैतान डे वन से बच्चों को बहकाने की कोशिश करता है और उनके साथ इस तरह का मामला करता है कि वो पूरे के पूरे से आ जाए। और आप देखिए, ला अहतनी करना, पूरा कॉन्फिडेंस है, आई विल श्योरली डू दिस, मैं जरूर ये कर लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये करूंगा। इसका यकीन क्यों है? क्योंकि उसको पता है ना कि मुझे अपना काम करना आता है। जुर्रियत हो इसकी औलाद को, जुर्रियत कहते हैं जुर्रा से, चींटियों को भी जुर्रा कहते हैं। बच्चे पूरी दुनिया में फैल जाते हैं बाज दफा बाद में, शुरू में एक घर में होते हैं, तो फैलने का मानी है, यानी औलाद ऑफ स्प्रिंग्स की मानों में आप ले लीजिए। इल्ला कलीलन, मगर थोड़े बचेंगे। कौन से थोड़े? सूरह हिजर आयत 131 में हम पढ़ चुके थे कि इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तो खालिस बंदों पे मेरा जोर नहीं चलेगा। तो इबलीस का टारगेट इन आयतों में क्या दिखता है कि आदम के बच्चों को ही बचपन से पकड़ लेता है और उनको बहकाने की कोशिश करता है। चलिए आगे चलते हैं, फिर तफसील इसकी फिर आएगी दोबारा। अल्लाह सुब्हान तआला इसका चैलेंज सुन के क्या जवाब देते हैं? कोई खौफ नहीं, डोंट वरी, काल अजहब। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ओके जाओ, गो हेड, डू इट। फमन तबीयक मिनहुम, फरमाए जाओ, और इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेंगे, यानी तुम भी और तुम्हारे पैरोकार सब का हाल क्या है? फइन्न जहन्नम जज़ाउकुम, बस बेशक जहन्नम तुम सब की जजा है। कैसी जजा? मौफूरा, पूरी की पूरी जजा। वाफर का लफ्ज सुना है उर्दू में, वही लफ्ज है वफारा, वफारा बहुत ज्यादा, यानी जहन्नुम भी तुम्हें मिलेगी तो फुल हैंड मिलेगी, हैंड फुल जन्नत तुम्हें मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगी। जहन्नुम की ये सजा सूरत सुआद आयत 84, सूरत शोरा आयत 94 से 95, और एक और सूरत है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी आता है कि अल्लाह ताला ने उसको ढील दी कि फाइन नक मिनल मुंजरीन, तो ढील दिया गया इला यौमी वक्तिल मालूम, एक मालूम वक्त के दिन तक। अल्लाह ताला ने कहा जाओ, लेकिन उसके बाद तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है। गोया के अल्लाह ताला ने उसके चैलेंज को कबूल किया और उसको इजाजत दे दी कि जाओ तुम बहका लो, जो करोगे करो। क्या अब अगली आयत में देखिएगा कि शैतान की वर्किंग मेथडोलॉजी बताई गई, वस्तफजिस, और तू फिसला ले। इस तफजिस का जो लफ्ज है ना, इसके अंदर रूट क्या होगा? फा जा, किसी को उखाड़ना, उचकाना या फिसलाना, हल्का जान के, किसी चीज़ को बहुत डिग्रेडेड जानकर उसको हल्का फुल्का करके इधर से उधर उछालना, इसको इस तफजजा कहते हैं, फजजा। यानी तू इनमें से जो हल्के लोग हैं ना, जिनका ईमान कोई नहीं, जिनके अंदर अमल कोई नहीं, तो तुम उनको बहका ले और इनको उखाड़ दे। कैसे? मिनहुम बिसौतिक, अपनी आवाज़ से। यहाँ आपको शैतान के चार दरवाजे दिखेंगे, जिसमें पहला दरवाजा आवाज़। और हैरान होंगे आपके आज आवाज़ों ने ही बहकाया हुआ लोगों को, हर तरफ आवाज़ें, कभी वो साज की सूरत में तो कहीं आवाज़, तो कहीं वो प्रोपेगंडों की सूरत में, तो हर वो आवाज़ जिसके ज़रिए से शैतान बुराई की तरफ बुलाए। बुराई की आवाज़ है, ये क्या होगी इसको आगे जाके देखेंगे। पहला चैलेंज अल्लाह ताला का इसको क्या था कि तू जिनको चाहे अपनी आवाज़ों से बहका ले, ठीक है। पहली बात हो गई कि जा तू इनको बहका अपनी आवाज़ों के साथ। अरबी जुबान में बकरी का नौजायदा बच्चा जो आवाज़ निकालता है ना, या उस बच्चे को फज़ा कहते हैं। ये जो इस्तफ़ज़ाज़ लफ्ज़ है ना, इसको थोड़ा समझ लें। अभी ठीक से चलने के काबिल नहीं होता, खड़ा होने की कोशिश में इसकी टांगें लड़खड़ाती है। तो इसी मुनासबत से मुहावरे में उस शख्स के लिए जिसकी टांगें किसी मामले में लुड़खड़ा जाएं, और तुम्हें कहते हैं ना कदम डगमगा जाना, हिम्मत जवाब दे, उसके लिए लफ्ज़ आता है। तो गोया कि यहाँ लफ्ज़ है डगमगाना। जब कभी नेकी के किसी काम पर डगमगाए ना, तो फौरन इस लफ्ज़ को याद कर लें कि शैतान के वार में आप आ गए, ठीक है। और क्या करो, अजलिब अलैहिम बिखैली का, और चढ़ाला इन पर अपने सवारों और प्यादों को। अजलिब का लफ्ज़ जो है ना, जलबा से है, जीम लामबाब, जिलबाब का नाम सुना, मिन जलावी बिहिन। बस उस लफ्ज़ को समझेंगे ना, तो आपको ये लफ्ज़ जलबा समझ आएगा। जिलबाब कहते हैं उस चादर को जो सर पे डाले ना तो पाँव तक आ जाए, पूरा घेराव करना, सर से पाँव तक ले लो। तो वाजलिब अलैहिम बिखैली का, कह के जा चढ़ा ला इन पर अपने सवारों को, यानी हमला कर दे। जलबा कहते हैं किसी को हंकाना, हांकना, जानवरों को हंकाते हैं ना और चराना। और जलबा कहते हैं चीख को भी। अजलबा के बाद जब अला आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी पर चिल्ला कर बोलना, ठीक है। तो जा चिल्ला, शोर मचा इनके ऊपर, भी खैली का अपने सवार। खैल किसको कहते हैं बुनियादी तौर पे, आपको पता, घोड़े को। तो खैल होता है घुड़सवार। ख्याल जो लफ्ज़ है ना उर्दू में, ख्याल, मेरे ख्याल में, वो भी यही है। इसमें बड़ी रौनक का लफ्ज़ आता है, तेज काम करने वाले कारिंदे, स्विफ्ट किस्म के वर्कर्स, ठीक है। तो जा इन पर अपने बहुत स्मार्ट किस्म के लोग भी तू मुसल्लत कर दे, और साथ ही साथ व रजीली का, और प्यादल। रजिल क्या है? रिजिल किसको कहते हैं आपको पता? रिजिल किसको कहते हैं? पाँव को कहते हैं। रा की जेर होगी रिजिल तो पाँव, और रजुल जीम पे पेश हो जाएगा तो मर्द, रिजाल उसकी जमा है। तो रिजल फिर कौन हो गए? पैदल चलने वाले, ठीक है। असल में जो खैलिक है ना, ये इसके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, और रिजली का सुस्त, यानी शॉर्ट टर्म प्लान, सुस्त करिंदे, कि चलो जाओ फिर तुम इस पे अपने हर मुमकिन तरीके से वार कर लो। बस शारिकुम फिलम वाली वल औलाद, और शरीक हो जा इनका इनके मालों में और इनकी औलाद में। वाइदहुम, और इनसे वादे कर। चार चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बी सऊती का, अपनी आवाज़ से बेका, शैतान का एक दरवाज़ा आवाज़ है। दूसरा शैतान का जो वार है ना, वो हमारा माल है। और तीसरा औलाद है, हमारी औलादें, और चौथा उसके झूठे वादे हैं। ये चार दरवाजे हैं जिसमें से शैतान झांक झांक के आज इंसानियत को खराब कर रहा है। और साथ ही अल्लाह ताला ने रिजल्ट भी बता दिया, वमा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और नहीं वादा करता इनसे शैतान मगर धोखे का। यानी वो करने की कोशिश तो करता है लेकिन कर नहीं पूरा पाएगा। किस पे इसका जोर नहीं है? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं होगा। तुम इंसानों को बहकाने और फिसलाने के लिए जो कुछ कर सकते हो कर लो, इनके दिलों में वसवसे डालो, इनसे झूठे वादे करो, इन्हें सब्स बाग दिखाओ, तमाम हरबे इस्तेमाल कर लो, लेकिन तुम्हें यह हरगिज़ इख्तियार नहीं होगा कि तुम मेरे किसी बंदे को उसकी मर्जी के खिलाफ गुमराही के रास्ते पे ले जाओ, क्योंकि वकफा भी रब्बी का वकीला, और काफी है तेरा रब बतौरे कारसास। यानी जो बंदा शैतान से बचना चाहेगा अल्लाह सुब्हानहु तआला उसकी मदद करेगा, और जिसका मददगार और कारसाज अल्लाह हो फिर इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ये था खुलासा। आपने इन आयतों को पढ़ के कुछ सोचा कि नहीं सोचा? मुझे जो फीलिंग आई है, और हमेशा ही आती है इन आयात को पढ़कर, कि मेरा दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है, हर मुमकिन तरीके से मुझे, मेरी औलाद को और मेरे माल को अपने हाथों में लेना चाहता है। और इसका सबसे खूबसूरत जो इसका सहारा है ना, वो आवाज़ है। शैतान हमारा दुश्मन है, क्यों? हसद किया था। याद रखिए, बहुत सारी दुश्मनियों के पीछे लफ्ज़ हसद होता है। किसी भी के बारे में अगर आपके दिल में कोई बुरा ख्याल आता है ना, तो ढूंढ के देख लीजिए आप उससे हसद करते हैं। इसको निकाल दें, क्योंकि हसद एक ऐसी बुराई थी कि जिसने इब्लीस को किधर पहुंचा दिया। फिर दूसरी बात देखिए कि इब्लीस का ये कहना कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा लेकिन बहका नहीं सकूंगा, इससे तसल्ली भी मिलती है कि शैतान हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी कोई खराबी नहीं कर सकता जब तक कि हम अल्लाह सुबहाना ताला के साथ ताल्लुक को जोड़े रहे। गोया कि आप कह लीजिए कि इखलास की जैकेट पहन ले तो शैतान का जोर नहीं चलता। अब थोड़ा सा हम इस पे देखते हैं कि शैतान काम कैसे करता है, क्योंकि शैतान सिर्फ दावे नहीं करता, वो काम भी करता है। वो दावे करके जाके सो नहीं जाता, बल्कि उस वक्त उसका काम का वक्त होता है। शैतान का ये सारा मंजर जो है इस वक्त ऐसे जहन में आ रहा है कि जैसे कोई डाकू है किसी बस्ती पर आया, साथ अपनी फौजें लेके आया, पैदल सवार, को घोड़ों पे, को टांगों पे, को पैदल, और कहते सब लूटो, भागो, छापा मारो, इधर जाओ उधर जाओ, और जो हाथ में आता है उसको लेकर चल पड़ो। अल्लाह ताला ने शैतान का वार हमारे सामने खोल के रख दिया, अब बचना ना बचना हमारा काम है। क्या तरीक़ाकार है शैतान का, थोड़ा सा इसको खुलासे के तौर पर देख लेते हैं। शैतान का सबसे पहला वार क्या है कि इंसान कुफर करे। सबसे पहला सूरह हशर में हम पढ़ेंगे कि शैतान सबसे पहले लोगों को कुफर पे माइल करता है, फिर जब लोग उसके कहने पे कुफर कर देते हैं तो फिर कहता है कि मैं तुमसे बेजार हूँ, और वहाँ उसको अकेला छोड़ के चला जाता है। जब इंसान शैतान के इस वार से बच जाता है कि नहीं मैं नहीं ये कर सकता जो तुम कह रहे हो, तो फिर उसके बाद अगला वार है शिर्क का। शिर्क शिरकात में ले जाता है। शिर्क यानी चलो अल्लाह को तो मानते ही हो, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसके साथ औरों को माने। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने खंडर होते हैं ना, उनमें से बुत बहुत निकलते हैं। आज भी कल्चर के नाम पे भी बुत आपको बहुत सारे दिखेंगे, फैशन के नाम पे भी बहुत सारे दिखेंगे, शिर्क पे डालते हैं। और शिर्क कितनी किस्म का है, इसको अभी हम अगर छेड़ने लग जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगी, लेकिन हर दौर का शिर्क फ़र्क होता है। कल लकड़ी के बुत थे, तो आज माशरा कुछ, एक दर्स है इंशाल्लाह किसी मौके पर दूंगी, आज के तीन बुत, तो उसमें भी इंशाल्लाह इस पर बात होती है। ठीक है, जो बंदा शिर्क से भी बच जाए तो तीसरे मरहले पे शैतान उसको बिदत में डाल देता है। बिदत क्या है? सुन्नत के मुकाबले में गैर मसनून काम। अल बिदत तुमीदु यानी सुन्ना, हदीस का एक खुलासा है कि बिदत दीन को या सुन्नत को तोड़ देती है, यानी अपनी मर्जी से नेकियों के काम करवाना और अल्लाह ताला के हुक्मों को पीछे डाल देना। जो बंदा बिदत से भी बच जाए, इसके इन कामों में भी ना चले, तो फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप पे कबीरा गुनाहों में मुलव्वस कर देता है, बड़े बड़े गुनाहों पे लगाता है। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि लोगों के बाकी छोटे काम तो सारे पीछे रह गए, बाज़ छोटी छोटी नेकियां कराता है लेकिन बड़े बड़े गुनाहों में लेके आता है। इससे भी जब लोग ना बच पाए कबीरा गुनाहों से भी, यानी बच गए कि नहीं हमने ये नहीं करना, तो फिर शैतान अगले दर्जे पर ऐसे लोगों के खिलाफ बदगुमानियां पैदा करता है जो दीन की तरफ बुलाते हैं। ये शैतान का बहुत फेमस उहदा है। मौलवी, उस्ताद, उलमाए कराम, दीनदार लोग, उनकी बातें यूं हाईलाइट करके लोगों में दिखाता है कि लोग इनसे बदगुमान हो जाएं। जब इनसे बदगुमान होंगे तो दीन से बदगुमान, तो इनको भी नहीं मानेंगे। क्योंकि ऐसा बंदा जो होता है ना, कितनी चखियों में से पिसने के बाद बड़ा मुफीद इंसान बन चुका होता है। तो शैतान को पता होता है कि ऐसे किसी एक बंदे के खिलाफ कोई स्कैंडल या बदगुमानी आम कर दो तो बस फिर देखो मेरा काम हो जाएगा। अब जब लोग बच गए, या दीनदारों के खिलाफ भी नहीं बोलते कि भाई देखो ना हम क्यों बोले, हमसे तो फिर भी अच्छे ही हैं, दीन का नाम तो लेते हैं ना, जो भी इनके मोटिव्स हैं, तो फिर उसके बाद अगले दर्जे में सगीरा गुनाहों में मुलव्वस करवाता है। कहते कोई बात नहीं, छोटी छोटी गुनाह है, फिर क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है इससे, ऐसे ही है ना, छोड़ दो छोड़ दो, चलो छोटे छोटे गुनाह। और छोटे छोटे गुनाह इतने बढ़ा देता है कि वो छोटी लकड़ियां जमा होकर जहन्नुम की आग जलवा देंगी। आप देखिए छोटी सी लकड़ी भी हो, आग जलाएं तो पकड़ेगी ना, तो जहन्नुम की आग भड़क उठती है, और ये बहुत खतरनाक है। कबीरा गुनाह को लोग गुनाह समझते हैं, तौबा कर लेते हैं, सगीरा गुनाहों को तो लोग गुनाह भी नहीं समझते, और यही बढ़ बढ़ के इंसान को जहन्नुम में डलवा देंगे। इसके बाद भी अगर एक इंसान केयरफुल होता है ना, तो अगले मरहले पे शैतान क्या करवाता है, ज्यादा मुफीद कामों से हटाकर कम फायदे की चीजों में डाल देता है। समझ रहे, कुरान सीखने नहीं भेजेगा, घर बैठ के नफिल पढ़ते रहो, ये करवाएगा। यानी जिस चीज से ज्यादा फायदा होता है ना उससे हटा देता है, कम फायदे की चीजों पे ले आता है। आप ये कह लें कि मुबाह कामों में मसरूफ रखता है, ये भी एक उसका काम है, और अजर वाले कामों से रोक लेता है। मतलब मुबाह काम के, घर की सफाई जायज़ है, काम करना, खाना पकाना मुबाह, मुबाह कहते हैं उस काम को कि जिसमें ना गुनाह हो ना सवाब हो आम हालात में। तो कम अजर वाले काम करवा करवा कर बड़े बड़े कामों से दूर कर देता है। उसके बाद इसका अगला मरहला क्या होता है, गुनाहों के कामों को कम खतरनाक करके दिखाता है। यानी ये अगला दर्जा है कि गुनाह इतना बड़ा है, उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा, लेकिन कहते नहीं इतना नहीं होता, सब करते हैं, लेस हार्मफुल करके दिखाता है। फिर इसके बाद इसका एक अगला दर्जा क्या होता है, 70 अच्छे कामों में मुबतला करवाता है ताकि एक बुराई करवा ले। इतना अकलमंद है कि पहले बंदे से नेकियां कराता रहता है, कराता रहता है, कराता रहता है, 70 नेकियां भी करा लेगा, और उसके बाद फिर एकदम एक ऐसी बड़ी बुराई करवाएगा कि वो सारे उसकी नेकियां जाया हो जाएंगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि इबलीस जो होता है ना, इंसान को ये एहसास दिलवाता है कि मैं कुछ नहीं हूं। ये शैतान का एक बहुत बड़ा वार है, वो कहता नहीं मेरा कोई वजूद नहीं है। आप किसी को भी कहें ना तुम पे शैतान आ गया तो गुस्सा करेगा, ये शैतान की तरफ से होता है। फिर उसके बाद झूठे वादे, गुनाहों के साथ तौबा की उम्मीदें, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, गुनाह आज तौबा कल, गुनाह जल्दी जल्दी, नेकियां देर देर से, इस तरह से शैतान हमें बहकाता है कि पता नहीं चलता। फिर एक और काम शैतान करवाता है, और वो क्या है कि अल्लाह के हुक्म में मुखालफत सिखाता है, जैसे उसने खुद की तनकीद करवाएगा। आज नेकियों और नेक लोगों के बारे में लोगों को कभी जरा तनकीद करते देखा करें, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मौलवियों पे बैठ के तनकीद करते रहेंगे, इससे क्या होता है, आज के दौर में क्या होता है, मुखालफत। आज कैसे पर्दा करें, आज कैसे रोजा रखें, आज कैसे सूद से बचें। फिर इसी तरह इसका एक और वार क्या है कि बुरे कामों को खूबसूरत नाम रखवा देता है उनके। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल आपको बता के, इंटरेस्ट, लफ्ज इंटरेस्ट कितना इंटरेस्टिंग है। अरबी में ब्याज कहते हैं, सूद कहते हैं, स्याह काला धन, इंग्लिश में कहते हैं नहीं ये तो इंटरेस्ट है। आप पता कि नॉर्वे में सूद को रेंट कहते हैं, मुझे शुरू में नहीं समझ आता था, रेंट तो अमूमन इंग्लिश में हम किराए की चीज को कहते हैं ना कि रेंट लेते हैं देते हैं, नॉर्वे में सूद को रेंट कहते हैं, इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। क्या लफ्ज इंटरेस्ट से ही सूद की शिद्दत कम नहीं हो जाती? अगर आज से हम इसको सांप कहना शुरू कर दें, इंग्लिश में कोई सूद को कोबरा कह दे तो मेरा ख्याल है कि लोग नाम से भी डर जाए। तो खूबसूरत नाम रखवाता है, एल्कोहल और म्यूजिक और आर्टिस्ट। पहले दौर में मुगनिया और तवायफ और न जाने इस तरह के नाम थे, आजकल उसके तो बड़े खूबसूरत से नाम रखता है। फिर इसी तरह इबलीस का एक और काम क्या, इफरात और तफरीत करवाता है। क्या किसी काम को थोड़ा करना होता है तो ज्यादा करवा देता है, ज्यादा करना होता है तो कम करा देता है। इबादत में नमाजों पे नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल पढ़ाता रहता है, और कमी क्या है कि फराइज और सुन्नतें छुड़ा लेता है। मामलात में अफरातो तफरीत कराता है, जिस रिश्ते की सिर्फ रिस्पेक्ट करनी थी उसको होली बना देता है, अल्लाह का हुक्म छुड़वा के उस इंसान की बात मनवा लेता है। फिर हकूक में इफरात तफरीत है, औरत को हकूक देते देते उसको पता नहीं कहाँ पे पहुँचा दिया। फिर इसी तरह इसका एक और बार क्या होता है कि नेक कामों से बेहिम्मती पैदा करवाता है, इनिशिएटिव नहीं लेने देता, नहीं नहीं ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल जॉब है, नो नो नो, हार्ड हार्ड हार्ड,